सिद्धार्णम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आयतनों का कथन चल रहा था। आयतन छह प्रकार के होते हैं। इसका विधान दो तरह से आता है। पहला ये है सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चा धर्म ऐसा कह करके इनके उपासक तीन सच्चे शास्त्र देव के उपासक सच्चे गुरु के उपासक और सच्चे धर्म के उपासक। उपासक अलग बात है और उपास्य अलग बात है। इन छह में से जो जो इसमें उपास्य होते हैं वो पूजनीय होते हैं और उपासक आयतन जो होते हैं वो पूजनीय नहीं होते, आदर के योग्य होते हैं। आयतन कहने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जितने आयतन होते हैं सब पूजनीय होते हैं, उपास्य होते हैं, आराध्य होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उपास्य समझना तो उन्हीं में बन सकता है जिनके पास संयम हो। क्या हो? संयम। जिनके पास संयम हो या तो उस संयम के माध्यम से घाती कर्मों को भी नाश किया हो या समस्त कर्मों को ही नाश करके परम निर्वाण को प्राप्त कर लिया हो, वो सभी हमारे लिए आयतन ही हैं। सच्चे देव कहने से दो देव आ गए, एक सिद्ध भगवान और एक अरिहंत भगवान, दो आ गए। ये दोनों देव के कोटि में आने से आयतन है। देव का अर्थ दो तरह से किया जाता है, ये भी ध्यान में रखने लायक है। देव 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 को भी देव कह करके उसकी पूजा में लग गए लोग। देव देव कहते कहते सब समान, देव भी समान, अरहंत भी समान, देव भी समान, सब में डूब गए, सब में लीन हो गए। विवेकहीन क्रियाएं आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। गुण दोष का विचार किया जाता है, गुण और दोषों का विचार करने पर ही कौन सा देव वंदनी पूजनी ये निर्णय होगा। और यह निर्णय विवेकी जन के लिए उपादेय हो सकता है, लेकिन अविवेकी जीव क्या कहता है, पहला पासून चुपचाप रहो, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए सर्वोपरि है, ऐसा कहता है कौन, अविवेकी। तो अविवेकी जीव का रास्ता अलग ही होता है, विवेकी जीव का रास्ता अलग, अविवेकी जीव का रास्ता अलग। अविवेकी दुख के रास्ते का चुनाव कर लेता है जिसमें दुख ही दुख है, और विवेकी दुख है या सुख है, कौन सा रास्ता पर चल रहा हूं, किस प्रकार से मुझे चलना चाहिए, ये ठीक है या नहीं, विचार करता है। विवेकी विचार करके चलता है, अज्ञानी विवेक बिना चलता है, बस इतना ही अंतर है। इतने में क्या होता है, एक के पास सच्चे आयतन रहते हैं और एक के पास अनायतन रहते हैं। अनायतन का उपवास जो जो करता है वो नियम से अज्ञानी होता है, अज्ञान के बिना तो अनायतन का सेवन हो ही नहीं सकता। जो जो अनायतन के उपासना में लगे रहते हैं वो नियम से अज्ञानी ही होते हैं, अज्ञान के कारण से ही अनायतन का सेवन होता है। किंतु ज्ञान आने पर कोई भी जीव अनायतनों का सेवन नहीं करता। तो देव यह एक शब्द है, देव यानी क्या, दिव्यते क्रीडते इति देवः। दिव धातु से ये शब्द की उत्पत्ति होती है, दिव्यते क्रीडते इति देवः, जो क्रीड़ा करे, आनंद की अनुभूति करे, जो उसमें रममान रहे, उसका नाम देव। जिस चीज में जो रममान होता है उसका नाम देव, क्रीड़ा करता है, उसमें लवलीन रहता है, उसमें डूबा हुआ होता है, तल्लीन रहता है, तत्पर रहता है, उसको कहते हैं देव। अब ये देव की परिभाषा दो तरह से कही गई है, देव यानी जो अपनी आत्मा में रममान हो वो भी देव, दिव्यते क्रीडते स्वकीय शुद्धात्मनि निजात्मनि वा इति देवः। अपनी आत्मा के भीतर, शुद्ध आत्मा के भीतर जो रममान रहता है उसका नाम देव। और एक दूसरी तरह से व्याख्या देव की, दिव्यते क्रीडते इंद्रिय विशेषु असौ देवः, जो इंद्रिय विषयों में रममान रहता है, इंद्रिय भोगों में तल्लीन रहता है, वो भी देव। मनुष्य को देव नहीं कहा, पर देवगति के देवों को देव कहा, क्योंकि देवगति में जो इंद्रिय विषय हैं, वैसे इंद्रिय विषय, इतने उत्कृष्ट इंद्रिय विषय, विशिष्ट इंद्रिय विषय मनुष्य गति में मनुष्य को नहीं होते। इसलिए उनको देव कहा। और देवों का काम क्या? देवों का कार्य और कुछ नहीं, इंद्रिय विषयों को भोगना, उसकी अनुभूति करते करते पूर्ण जीवन व्यतीत करना, एक ही काम, इंद्रिय विषयों को भोगो जो उत्कृष्ट मिले हैं। इसलिए उनको देव कहा। अब एक इंद्रिय विषयों में लीन होने से देव कहला रहा है और एक आत्मा के अंदर लवलीन होने से, आत्मा की अनुभूति करने से, आत्मा के वैभव को अनुभव में लाने से देव कहला रहा है। इसमें विवेक से निर्णय किया जाता है देव एक हो गए क्या। विवेक से निर्णय किया जाता है कि ये दोनों देव एक हैं क्या। एक को इंद्रिय विषय भोगों में लीन रहने से देव कहा और एक को आत्मा में लीन रहने से देव कहा। अब इसमें पूज्य कौन, अपूज्य कौन, आयतन कौन, अनायतन कौन? देव है, आयतन है, और जो भोगों में लीन है वो अनायतन है। बस ये विवेक का ज्ञान तीर्थंकर भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा समझो देव का अर्थ, शब्द से गुमराह मत हो। देव 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 कहते कहते दिमाग खराब कर दिया। गुमराह नहीं होना, विवेक से सोचना, विवेक से चलना, सोच सोच करके चलने का नाम ही जैन धर्म है। पवित्र जैन धर्म विवेक का ज्ञान पैदा करता है और अज्ञानी जीव उसका तो विचार नहीं करता। तत्व का विचार नहीं करना, सिद्धांत का विचार नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना, कौन करेगा? वो फुर्सत नहीं हमें। हमको तो एक सेंटेंस में बताओ धर्म। धर्म किसे कहते? ऐसा थोड़ी होता है। समय देना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। धर्म इतना आसान है क्या? विचार किए बिना अपने जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। यही आयतन और अनायतन इन दोनों को सिद्ध करते हैं। और एक देव, इनको भी देव कहा, गुरुदेव है? एक शब्द ही भी आता है। भगवान को भी देव कहते हैं, देवाधिदेव, वो देवाधिदेव हैं। देवाधिदेव यानी देवों के बीच में, यानी जितने भी संसार के देव हैं उन सब के बीच में, उनके द्वारा भी जो पूजनीय है वो देवाधिदेव। देवाधिदेव का तात्पर्य है जो समस्त देव जिनकी पूजा करते हैं वो देवाधिदेव। समस्त देव, देवलोक के देव, देवगति के देव किसकी पूजा करते? वीतरागी भगवान की। इसलिए वो देवाधि देव, आदि यानी जिनके बीच में सर्वश्रेष्ठ हैं वो देव। और एक देव ये भी हैं, गुरुदेव। गुरुदेव किसकी पूजा करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, किसकी वंदना करते हैं? देवादिदेव, यानी गुरुदेवों के द्वारा भी वंदनी और देवगति के देवों द्वारा भी वंदनी, पृथ्वी पर चक्रवर्ती के द्वारा भी वंदनी, त्रियंशों से भी वंदनी। त्रियंश भी जिनके समोशरण में जाकर के दिव्य उपदेश सुनते हैं उनके द्वारा भी वंदनी। इस कारण से उनको देवाधिदेव कहा। जब बार बार देवाधिदेव तो नहीं कहेंगे, जब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देव। वंदनीय देव, पूज्य देव, अर्चनीय देव, आराध्य देव, उपास्य देव, जब उपास्य वंदनीय आदि कहेंगे तो वही मात्र आते हैं। या तो सिद्ध भगवान आते हैं या तो अरहंत भगवान आते हैं, बाकी सब उपासक देव। क्या उपास्य? उपासक देव। और ये देव उनकी उपासना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी आत्मा को भी देवादिदेव बनाना है, साधना में लीन है वो भी। समोशन में क्यों आ गए? सुन करके अपनी आत्मा को भी हम परमात्मा बना लें, यह लक्ष्य देवों का भी रहता है। कैसा रहता है कि हम तो स्वर्ग में हैं, यहीं रहेंगे, पूजा करेंगे, बस यहीं रहेंगे, मोक्ष जाना नहीं चाहेंगे, परमात्मा नहीं बनना चाहेंगे, साधु नहीं बनना चाहेंगे, हम तो देव हैं, पूजक हैं, सेवक हैं, ऐसा नहीं। देव भी समोचरण में आते हैं तो वो भी अरहंत बनने के लक्ष्य को लेकर के ही आते हैं, वो भी भक्त ही हैं, उपासक हैं। इस भक्त और भगवान के बीच के संबंध को ही जिसने नहीं जाना, उनका कोई भरोसा नहीं, वो किसकी पूजा करेगा? भेद मालूम नहीं है तो कभी इधर भी इसको भी देव कहता है और इसको भी देव कहता है, दोनों की पूजा में संलग्न हो जाता है, तो ये भटकता है अज्ञानी जीव। और भटक गया तो अटक गया। कहां अटक गया? संसार में अटक गया। तो देखो, आयतन 6 बता दिया, पहले के 3 आयतन पूजनीय हैं और बाकी के आयतन पूजक हैं, वो स्वयं पूजा करते हैं, पूज्य की पूजा शेष 3 आयतन करते हैं। कुछ लोगों का ये भ्रम है, कहते हैं ये शेष जो आयतन है ये सम्यक दर्शन के कारण से आयतन बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, चौथे, पांचवे और छठे नंबर के जो आयतन हैं, वे किस वजह से आयतन कहलाए? सम्यक दर्शन के वजह से। किंतु सम्यक दर्शन होने मात्र से क्या पूज्यता आएगी? सम्यक दर्शन होने मात्र से क्या पूज्यता आएगी? नहीं आएगी। तो पूज्यता किससे आती है? संयम आने से। संयम क्या चीज है? संयम 2 प्रकार का, कौन कौन सा? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रियों को जीतो और प्राणी की हिंसा त्याग करो, जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्याग। और परिग्रह को त्यागे बिना प्राणी हिंसा रुक नहीं सकती, प्राणी संयम आ नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव ने सब कुछ त्याग दिया। क्या त्याग दिया? बहिरंग परिग्रह त्याग दिया। किस संयम को प्राप्त करने के लिए? प्राणी संयम की प्राप्ति के लिए। परिग्रह प्राणी संयम का घातक है, वो जीव रक्षा नहीं होती उससे। परिग्रह रहेगा तो जीव रक्षा होना संभव नहीं। इसलिए दुनिया मात्र के जीवों पर दया करने के लिए परिग्रह का त्याग किया, प्राणी संयम की सिद्धि हो गई। वो प्राणियों की रक्षा करते हैं इसलिए वंदनीय है, या तो यूं कह दो, ये भी ठीक, प्राणियों की रक्षा करने में संलग्न है इसलिए वंदनीय, या तो इंद्रियों की विजेता है इसलिए वंदनीय। और इंद्रिय विजेता होने के लिए भी परिग्रह त्यागना ही पड़ेगा ना। परिग्रह इंद्रिय विषय हैं, इन्हीं का तो भोग होता है। जो भोग्य सामग्री है सब कुछ त्याग दिया, रंच मात्र रखा नहीं, कल की चिंता नहीं, आज की भी चिंता नहीं कि आज आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज की भी चिंता नहीं और कल की भी चिंता नहीं। वीतराग, पुण्य कर्म का उदय होगा तो आज आहार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लौट के आ जाएंगे। और ऐसा होता भी है, आहार मिले कोई गारंटी नहीं, देने वाले देना चाहते थे, लेने वाले लेने के लिए ही गए थे, लेकिन बीच में विघ्न आया, अंतराय आया, जीव आया, बाल आया, किसी का हाथ कापा, लोटा ही गिर गया, महाराज निकल आए। अंतराय कर्म के उदय का होने पर उसके फल को स्वीकार करना ही पड़ता है। अंतराय क्यों रखा मुनि के जीवन में, अंतराय करो ये क्यों है? अंतराय कर्म का उदय ये हमें संकेत देता है कि आज भोग सामग्री मिलने का समय नहीं है। अंतराय कर्म संकेत देता है आज आहार नहीं हो सकता। कर्म कह रहा है आज आहार नहीं हो सकता, मैं बाल आ गया हूं देख लो, मैं जीव आ गया हूं देख लो, मरा हुआ जीव आ गया हूं, चीटी मूंगी, कैसे करोगे आहार? आहार अशुद्ध होने से त्याग किया जाता है। तो आहार अशुद्ध हुआ ये कर्म के उदय से तो हुआ, तो अशुद्ध आहार का त्यागी तो होते ही हैं, लेकिन उस दिन आहार का त्याग क्यों किया जाता? निकाल के रखते, दूसरा ले लेते। आहार अशुद्ध है तो जिस चीज में वह अशुद्ध वस्तु आ गई है उस चीज को त्यागो, बाकी सब ले लो। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि आज आहार अशुद्ध जो हुआ है ये हमें संकेत दे रहा है कि आहार नहीं करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। आहार के प्रति भी इतना मोह नहीं रखते, उस दिन आहार को छोड़ देते हैं, कल के दिन देखेंगे, कल भी अंतराय आया, परसों के दिन देखेंगे, परसों भी अंतराय आया, और दूसरे दिन देखेंगे, और फिर अंतराय आया। एक व्यक्ति को ऐसा अंतराय आता था कि डालते ही उसमें मूंगी दिख जाती थी, और कितनी बड़ी, इतनी बड़ी मोटी काली मूंगी जो चलती फुरती आंखों से दिखती है, बारीक भी नहीं, बहुत मोटी, और देने वाले 10 बार देख करके शोध करके देते थे, और ऐसा करने पर भी उनके हाथ में जो ही गया उनको दिखने लगता। बहुत विचित्र बात थी, 10 बार 10 लोगों ने शोधा उस पदार्थ को, और हाथ में रखते ही उनको दिख रहा है लेकिन अपने को नहीं दिख रहा है। क्या हो गया? ऐसा क्यों दिखता था? अंतराय कर्म का तीव्र उदय। अब ऐसा भी हो सकता है कोई अपना पूर्वभव का शत्रु हो और वह चेष्टा कर रहा हो, विघ्न डाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता, तो दिखा देता है ये मरा हुआ जीव है। कोई गंतर आदि देव कर सकता है ऐसा, कुछ भी जादू कर सकता है ना, जादूगर करता है कि नहीं। हाथ में कुछ नहीं था, अभी अभी ऐसा खाली था उनका हाथ, मुट्ठी बांधा है और खोल दिया है, पैसे गिरने लगे, ये जादू है क्या? नहीं, देव लोग ऐसा जादू कर सकते और उसमें विघ्न आ सकता है। ऐसे विघ्न आने लग जाए तो आहार स्वीकार नहीं करते जब तक कि वो अशुभ कर्म का उदय है, कोई सता रहा है, तब तक उस आहार को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका आहार नहीं हुआ, बहुत दिन तक आहार नहीं हुआ, लास्ट में परीक्षा में पास तो होना ही पड़ता है, परीक्षा में जब पास हो गए तो अंतराय होना बंद हो गया। कोई देव परीक्षा कर सकता है कि कितने दृढ़ है, देखेंगे चारित्र में कितने दृढ़ हैं, चारित्र छोड़ते हैं कि नहीं। परीक्षा की घड़ी आती है, परीक्षा ले सकता, और आप परीक्षा में पास हो गए तो उसको भी दया आती है जो ऐसा करता है, ये अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा करूंगा तो हिंसा होगी, तकलीफ होगी, उनके प्राणों को दुख होगा, नहीं करना, त्याग देता है, करना त्याग देता है, धन्य है इनका चरित्र, नमोस्तु करके निकल जाता है। ऐसी परीक्षा बड़े बड़े मुनि महाराजों की भी होती है, परीक्षा होती है, कोई भी देव परीक्षा कर सकता है। ये अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म ये सूचित करता है कि इस प्रकार के वस्तुओं के आने पर आहार नहीं करना। तो ये जो वस्तु आ रहे हैं हाथ में, जिनके कारण से अंतराय करना पड़ता है, वो अगर आ गई तो अंतराय कर्म की सूचना पा करके वो अंतराय कर लेते हैं। आज आहार लेने का संयोग हमारे आज के दिन में नहीं है, त्याग देते हैं। इंद्रियों को जीतना तभी संभव जब बहिरंग परिग्रह के प्रति मोह छोड़ना संभव हो। जो बहिरंग परिग्रह के प्रति मोह छोड़ देता है वो इंद्रिय विजेता हो जाएगा। विषयों को रखते रखते इंद्रिय विजेता कभी नहीं हो सकता। एक प्रश्न है, घर त्यागा, सभी पदार्थ त्यागे, वस्तु त्यागे, केवल एक वस्त्र रखा, एक ही वस्त्र रखा, उदाहरण के लिए एक ऐलक है और एक आरिका है, एक ही वस्त्र है दोनों के पास, और तो खाने पीने की चीजें तो साथ में होती नहीं, पैसा ऐसा गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं, ऐलक शुल्लक के पास भी, गाड़ी का भी त्याग रहता है दीक्षा के टाइम में, केवल एक वस्त्र का ही संकल्प लेकर के परिग्रह को रख करके बाकी समस्त वस्तु का त्याग होता है। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी का ऐलक शुल्लक आरिका नहीं बैठते, नहीं, बैठना शिथिलाचार बात अलग है, उसका नियम क्या है। गाड़ी में बैठना हो तो गाड़ी परिग्रह को छूट रखना चाहिए तो चलेगा क्या? पिंछी हाथ में आ गई, काय के लिए आई है? जीव रक्षा के लिए। फिर इसके साथ एक गाड़ी भी रखना, इसके साथ कोई तालमेल है? बैठते उठते समय भी हम इसको लगा रहे हैं, और गाड़ी में बैठोगे तो कहां लगाओगे? गाड़ी से इसको बांधोगे? अगले चाह के लिए बांधो चार पिंची, ऐसा ऐसा, वो जो पानी हटाने वाला होता है ना, ऐसा ऐसा सिस्टम कर दो कि रास्ते में जितने जीव होते हैं उनको हटाते जाए, और फिर गाड़ी में बैठो। ऐसा भी करोगे तो भी तो निषेध है। हिंसा नहीं भी होती हो तो भी गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी परिग्रह का त्याग करके ही छुल्लक और अलग बनना होता है। छुल्लक और अलग आरिका के लिए क्या छूट है? एक वस्त्र मात्र का, अन्य छूट है क्या? फिर गाड़ी में कैसे बैठ सकते? और यदि बैठते हैं तो वो छुल्लक अलग वर्थ है ही नहीं, च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए। दीक्षा लेते समय ये छूट लिया जा सकता है क्या? मैं गाड़ी का छूट रख करके और वस्त्र का छूट रख करके अलग बनूंगा, मान्य है शास्त्र में? नहीं है। तो छूट किसके लिए है? केवल वस्त्र के लिए छूट है। फिर गाड़ी में कैसे बैठ सकते? दीक्षा लेते समय तो ये कह करके कि वस्त्र के बिना हम सब कुछ त्याग देते हैं, फिर बाद में गाड़ी का सहारा ले लिया, जीव हिंसा हुई, अहिंसा अनुरत चला गया, परिग्रह गाड़ी परिग्रह का आश्रय ले लिया तो अपरिग्रह अनुरत भी चला गया। अब अहिंसा और अपरिग्रह ये दो ही चले गए तो फिर सत्य अचौर ब्रह्मचर्य कहां से रहेंगे? वो भी चले गए तो खोखला जीवन, गुणों से खाली। और फिर इच्छा में किसको कहोगे? गाड़ी को। इच्छा में किसको करोगे? वंदा में किसको करोगे? भेष को। भेष वंदनी नहीं, आचरण वंदनी। वहां वंदामी कहने के लिए और इच्छामी कहने के लिए योग्यता क्या चाहिए? एक वस्त्र, बाकी कुछ नहीं, ये योग्यता कहलाती। एक वस्त्र को छोड़ करके बाकी का जिसका त्याग हो वही वंदामी के योग्य और इच्छामी के योग्य। और फिर गाड़ी में ही साक्षात बैठ करके आए और फिर भी वंदामी इच्छामी करते हुए सेवा में लग गए, ये भूल किसकी? फिर क्यों नहीं पूछा कि गाड़ी में क्यों बैठते आप? ज्ञान नहीं है और ये शास्त्र सभी ज्ञान के लिए लिखे हैं या अलमारी में रखकर नमस्कार करने के लिए लिखे हैं? पढ़ने के लिए लिखे हैं। इसमें जैसा लिखा है वैसा त्यागी को देखो, ऐसा है क्या नहीं त्यागी? काय के लिए लिखा है? छिनवाणी में चलता है ये लिखा हुआ मिलना चाहिए, चलता है बोलते तो लोगों का देखा देखे और सुनने से करना है क्या? कौन बोलते चलता है? शास्त्र बोलता है कि लोग बोलते? और आपको कैसे चलना है, लोगों से चलना है कि शास्त्र से चलना है? पहला शास्त्र पढ़ो कैसे चलता है। चलता है कहने वाले का अधिकार भी क्या है? चलता है, लोग तो सब चला लेंगे। आज गाड़ी चलती है, कल के दिन घर में रहना भी चलता है। मुनि महाराज आ करके आपके घर में रहने लग जाए, लोग कहते हैं चलता है। फिर धीरे धीरे घर में ही रहने लगे, दो बार खाना, लोग कहते हैं दो बार खाना मुनि खाते हैं, लोग कहते हैं चलता है। तो उनका सुन करके आप भी कह रहे हैं कि चलता है, लोग कहते हैं चलता है। तो लोगों का सुनते जाओगे कि शास्त्र का सुनते जाओगे? तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ करके क्या चलता क्या नहीं चलता शास्त्र से निर्णय करो। लोगों की बातों में नहीं आना। इतना तो विवेक हो कि त्यागी को किसके आधार से हम देखें? गुरु को शास्त्र के आधार से देखें कि लोगों के आधार से देखें? भगवान को शास्त्र के आधार से देखें कि लोगों के आधार से देखें? लोग तो लोग हैं, वो सदा ही शास्त्र से दूर रहते हैं। लोग तो कहते हैं कि उनके लिए अनुकूल कोई व्यक्ति मिल गया तो भगवान बन जाता है, वो स्वार्थ, लोग स्वार्थी रहते हैं। लोग तो स्वार्थी रहते हैं, उनके लिए उनके अनुकूल कोई मिल गया ना तो भगवान भी बना ले, परमात्मा भी कह दे उसको, कहते भी है कि नहीं? भगवान वस्त्रधारी है, हमारे भगवान लगा दिया भगवान नीश, लोग कहते हैं। तो शास्त्र कहता है क्या? आप किसका सुनोगे, लोगों का सुनोगे कि शास्त्र का? तो लोग क्या कहते हैं उससे ध्यान नहीं देना। लोग कुछ भी कहते रहते, तुम्हारा कल्याण शास्त्र से होना है क्या लोगों से होना है? शास्त्र से होना है। लोग कुछ भी कहते रहते, वो लोगों का कहना शास्त्र में है या नहीं ये देखना, और अगर शास्त्र में नहीं है तो लोग झूठ कहते, ये निर्णय कर लेना। लोगों की बात तो झूठ ही निकलती है, झूठ ही रहती है। लोगों की बातों में आकर के देवशास्त्र गुरु को मानना है या शास्त्र पढ़ करके देवशास्त्र गुरु को मानना है? तो लक्षण है, देव का लक्षण अलग है, गुरु का लक्षण अलग है, शास्त्र का लक्षण अलग है। लक्षणावली को समझ करके व्यवहार करना, गुरु से, शास्त्र से, भगवान से, जो भी व्यवहार होता है, छुल्लक से, अलग से, ये जो व्यवहार आपके उनके साथ होते हैं, शास्त्र के आधार से हो क्या लोगों के आधार से हो क्या परंपरा के आधार से हो? शास्त्र के आधार, शास्त्र में जितना लिखा है उस लक्षण के अनुसार अगर कोई त्यागी मिलता है तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी करना क्या अनिवार्य है? नहीं करेंगे तो क्या अप्रभावना होती है? नहीं करेंगे तो क्या आपको कोई पूछने वाला है क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे तो त्यागी कोई कहने का अधिकार रखता है कि आप क्यों नहीं करते? वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है तो आपसे पूछने का किसी को अधिकार नहीं, क्यों नहीं करते? आप ईमानदार हैं, आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पूछने का कोई हिम्मत नहीं रख सकता, क्यों नहीं करते? उसका उत्तर दे दिया, शास्त्र के अनुकूल आचरण नहीं है। बस इतना ये कि एक सेंटेंस बहुत वजनदार है। वो शास्त्र के अनुकूल आचरण नहीं है इसलिए हम सेवा नहीं करते, बहुत वजनदार सेंटेंस है ये, जिनवानी से आ गया है। इसका मुकाबला कोई दुनिया नहीं कर सकती, इसका उत्तर कोई दुनिया के पास है ही नहीं। हम जिनेंद्र भगवान के उपदेश के विश्वासक हैं और वो जैसा कहते हैं, जैसा त्यागियों का आचार विचार रहने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए कहा है, वैसा जैसा कहा है वैसा ही हम विश्वास करते हैं और इसको देख करके हम उनको मानते हैं, अन्यथा वो हमारा त्यागी ही नहीं। आपका घर का बेटा भी क्यों न मुनि बना हो, अगर शास्त्रानुसार उसकी चर्या नहीं है, वो बेटा अपना गुरु नहीं है। जिनवानी किसी पर दया करती है? अगर किसी का बेटा दीक्षा ले लेता है, मुनि बन जाता है, तो उस पर तो दया करो, और बाकी का ले लेता है तो दया मत करो। ऐसे भेदभाव है क्या? नहीं, वो हमारा निकटस्थ भी है और अधर्म आत्मा है, तो अधर्म तो अधर्म ही है। हम स्वयं अधर्म आत्मा है तो जिनवानी से बहुत दूर हैं, तो हम सत्य कहलाने लायक कोई अधिकार हमारा ही नहीं। संविधान एक बार देश का बन गया तो उसके सामने कोई समझौता होती है? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो संविधान के अनुसार ही देगा, और यदि संविधान ही कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर बहुत आयाम करनी पड़ेगी, फिर तो सारे देश के मत उसके लिए चाहिए। और संविधान की नियमावली तभी चेंज किए जाते हैं जब उसके माध्यम से प्रजा का कल्याण नहीं हो रहा हो, हित नहीं हो रहा हो, देश चल नहीं पा रहा हो, देश का नुकसान हो रहा हो, तब चेंज किए जाते हैं। संविधान में जो सच्चे नियमावलियां हैं उनको चेंज नहीं किया जाता, जिसमें कमियां हैं, जिससे देश को नुकसान पहुंच सकता है, उस संविधान को चेंज किया जाता है। बैठ करके विचारवंतों को लेकर के बैठा जाता है, मीटिंग लिया जाता है और उस पर विचार किया जाता है, उसको निकाल करके उसकी जगह जो देश के लिए हितकारी संविधान है उसको नया रूप से लिखा जाता है। अरहंत भगवान ने संविधान सबके लिए एक ही बार बना दिया है, तीर्थंकरों ने एक ही बार बनाया, उसका परिवर्तन हम करें क्या? अरहंत भगवान करे? हम कर सकते? हम कौन करने वाले? धर्म के सिद्धांत को परिवर्तन करने वाले हम कौन? साधारण लोग ये सोचते हैं, महाराज धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बदलते ही रहना चाहिए, हजार वर्ष के बाद तो पूर्व शास्त्र को किनारा कर देना चाहिए और नया शास्त्र बना करके चलना चाहिए, और ये शास्त्र सभी तीर्थंकर भगवंतों के शास्त्र, उनके उपदेश के शास्त्र, और साधारण व्यक्ति क्या बोल रहा है, हर हजार साल में शास्त्र बदलना चाहिए। वो शीतलाचारी है, वो मनमानी करना चाहता है, धर्म पालन करने की शक्ति उसके पास नहीं है, इसलिए वो कहता है कि बदलना चाहिए। शास्त्र को अपने अनुरूप बना रहा है वो, शास्त्र के अनुरूप खुद को होना चाहिए कि शास्त्र को अपने अनुरूप बनाना चाहिए। जो शास्त्र को अपने अनुरूप बनाना चाहता है ना, उसी के मन में ये बात आ सकती है कि हर हजार साल में शास्त्र को बदलना चाहिए। चौथा काल था, पंचम काल आ गया, शास्त्र में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। ये शीतलाचारी है, ये कमजोर है, ये नपुंसक है, ये पालन नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा है। नहीं कर सकते हो तो तुम शीतलाचारी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र, शास्त्र बदला नहीं जाएगा, शास्त्र को बदला नहीं जा सकता। शास्त्र पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, इसका स्वरूप आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये प्राकृतिक नहीं नियम है, प्रकृति को बदला नहीं जा सकता और बदलना भी नहीं चाहिए। हमारा आचरण बदल सकता है, वो हमारी स्वाधीनता से, पर हमारे आचरण के कारण से शास्त्र को बदलना बिल्कुल गलत है। मैं नहीं चल पा रहा हूं इसलिए दुनिया को बदल दो, गलत है क्या? नहीं, मैं शास्त्रानुसार चल नहीं पा रहा हूं इसलिए दुनिया भी ना चले, ये मेरा गलत है क्या? नहीं, गलत है। मैं चल रहा हूं, दुनिया नहीं चल पा रही है, फिर भी दुनिया को चलाना चाहते हैं, ये गलत है क्या? नहीं, क्या पूछा? मैं चल पा रहा हूं, शास्त्रानुसार चल पा रहा हूं, दुनिया चल नहीं पा रही है, फिर भी मैं दुनिया को चलाना चाहता हूं, ये गलत है क्या? सही है, ये कुछ कुछ सही है, क्योंकि दुनिया पर दया आती है, दुनिया को शास्त्र का ही उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, दुनिया चल सकेगी, आप जैसे व्यक्ति उसी में से निकलेंगे। आप जैसे एक व्यक्ति निकला तो दो हो गए, एक और निकला तो तीन हो गए, इनकी संख्या बढ़ सकती है, दया के कारण से किसी को उपदेश दे सकते हैं, देना ही चाहिए। परंतु इसका भार किसी पर जबरदस्ती रखा जा सकता है क्या? हाथी के ऊपर आदमी तो बैठ सकता है, लेकिन आदमी के ऊपर हाथी को बिठाया जाए तो जीव सब अलग अलग हैं संसार में, किसी को कुछ शक्ति है, किसी को कुछ शक्ति है, शक्तियानुसार तीर्थंकर भगवंतों ने जिसके पास जितनी शक्ति है उतना धर्म स्वीकार करो कहा, और जिसके पास शक्ति है ही नहीं उसको जबरदस्ती में मुनि बनाया जाए है? जिसके पास शक्ति है ही नहीं उसको मुनि बनाया जाए क्या? बोलो। और अगर बना दिया तो क्या सिद्धांत सुरक्षित रहेगा उसके माध्यम से? शास्त्र में जैसा आचरण बताया वैसा सुरक्षित रख पाएगा अपने जीवन में? नहीं रख पाएगा। वो आदमी के ऊपर हाथी बिठाने जैसा हो गया तो भगवान ने कहा उस व्यक्ति को दीक्षा नहीं देना जो पालन नहीं कर सकता है। धर्म किसी पर जबरदस्ती नहीं होता, उसके पास यदि धर्म के प्रति भक्ति है, अपने जीवन कल्याण के प्रति समर्पण है, तो वो अपनी तरफ से शक्ति के अनुसार स्वीकार कर लेगा, अपनी तरफ से स्वीकार कर लेगा वो। थोपना नहीं, थोपने से कभी धर्म नहीं होता, वो स्वयं समर्पित होकर के आ जाएगा। स्वयं का, स्वयं की कल्याण की चिंता जब हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो स्वीकार कर लेगा, धर्म थोपने की वस्तु नहीं, लेने की वस्तु है, धर्म आचरण की वस्तु है। धर्म के लिए पहला समर्पण चाहिए पड़ता, विदाउट समर्पण धर्म हम नहीं कर सकते। और धर्म को जीवन में स्वीकार करने से पहले ये सोचो कि मेरे पास उसमें से कितना प्रमाण लेने की शक्ति है, मैं उसमें से कितना ले सकता हूं। वो तो पहाड़ है, उस पहाड़ में से कितने पत्थर मैं भर सकता हूं। पहाड़ को उठाने की शक्ति है तो पहाड़ को उठा लो, हनुमान बन जाओ, लक्ष्मण के उपचार के लिए उठा के ले जाओ। एक महाव्रति बनता है कोई व्यक्ति तो पहाड़ को उठाता है, एक अनुव्रति बनता है तो कुछ पहाड़ के हिस्से को खोद लेता है, और एक आठ मूल गुणधारी बनता है तो पहाड़ के तलहटी के कंकरों को बीन लेता है। जिसकी जो शक्ति है उतना करेगा, जितनी शक्ति होती है अपने पास उतने प्रमाण में धर्म करने का उपदेश दिया। तीर्थंकर भगवंत ने जबरदस्ती किसी माथे पर नहीं थोपा, शक्ति तस त्याग शक्ति तस तप, स्वीकार करो और अपना कल्याण करो। इस भाव में जितना होता है उतना कर लो, जितनी शक्ति है उतना, और जो नहीं होता है उस पर श्रद्धा रखो, आस्था रखो। जो इस भाव में नहीं कर सकते वो पर भाव में तो कम से कम मैं करूंगा, इस प्रकार की आस्था श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस भाव में अगर कोई मुनि नहीं बन पाता तो कभी मुनि नहीं बनूंगा ऐसा सोचे कि कभी न कभी बनूंगा, लेकिन इस भाव में इतना ही बन सकता हूं, छुलक अलग तक जा सकता हूं, ये कह करके उतना भी रह सकता है। क्या अलग बनने वालों को नियम है तो मुनि बनना ही चाहिए, नहीं तो तब तक अलग नहीं बना देंगे, ऐसा कोई सिद्धांत ऐसा कुछ भी नहीं। कोई अलग बन करके अपना जीवन का अंत कर लेता है, कोई मुनि बन करके कर लेता है, कोई श्रावक बन करके कर लेता है, अलग अलग जिसके पास जो शक्ति जितनी है उतना ही कर रहा है ना। आवश्यकता किस बात की है, समर्पण की आवश्यकता है धर्म के लिए। समर्पण, समर्पण मांगता है धर्म। तुम अपने प्रति स्वयं के प्रति कितने समर्पित हैं, अपने कल्याण के प्रति कितने समर्पित हैं आप, वो है धर्म। धर्म देखा देखी नहीं होता, धर्म को थोपा भी नहीं जाता और धर्म को जबरदस्ती जीवन में उतारा भी नहीं जाता। धर्म समर्पण मांगता है सबसे पहले, और जितने प्रमाण में आप समर्पित रहते हैं उतने प्रमाण में निश्चित रूप से आचरण आपके जीवन में आता ही है, उतने प्रमाण में आता है जितने प्रमाण में आप समर्पित हैं। ये धर्म है। तो आयतन के संबंध में चर्चा है, तीन आयतन तो पूज्य हैं, पहले के तीन पूजनीय हैं, बाद के तीन पूजक हैं। तो पूजक पूजक की पूजा करे क्या पूजक पूज्य की पूजा करे, पूजक पूज्य की पूजा करे क्या पूजक एक दूसरे की पूजक की पूजा करे, ये आयतन आयतन कहने से सभी आयतन वंदनी नहीं होते, और पूजक पूजक दो, देव भी पूजक मनुष्य भी पूजक, अरहंत के लिए अरहंत पूज पंच परमिष्टी पूज, पर श्रावक भी पूजक और देव भी पूजक, दोनों पूजक है ना, दोनों पूजक हैं। अब ये पूजक आपस में पूजा करे क्या? आप सभी सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं, असम्यक दृष्टि है तो ये नीचे के तीन आयतन में आप आ गए। तो क्या आप लोग आपस में पूजा करवा रहे हैं? हम सम्यक दृष्टि हैं इसलिए पूजा करवाते हैं। तो आप में पूज्यता आने के लिए और क्या चाहिए? संयम चाहिए। फिर ये मंदिर के देवता जो पूजक के रूप में रखे गए हैं, उनकी पूजा लोग जो करते हैं, ये क्या है? अज्ञान है क्या? नहीं, क्या जैन तत्व ऐसा है? क्या भगवान ने कहा है कि पूजक को भी पूजा करते रहो? ऐसा क्यों कहेंगे वो? और अज्ञानी जीव शांति सागर जी को अगुआ बना करके क्या कहता है? शांति सागर महाराज ने कभी निषेध नहीं किया, हम सब पूजा करते थे उनके सामने, उनका अभिषेक भी करते थे, महाराज कुछ नहीं कहते थे। ऐसा अगुआ करके, उनका समर्थन लेकर के, गुरुओं का समर्थन लिया जाता है काय के लिए? अपने अज्ञान के पुष्टि के लिए, या यूं कह दो अज्ञान के कारण जिस धर्म का वो पालन कर रहा है उस धर्म को दूसरे पर थोपने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, यूं भी कह सकते। प्रतिष्ठा करने के लिए उनको बिठा के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराए तो अच्छा है, दूसरे को प्रतिष्ठा करने जा रहे। खुद की प्रतिष्ठा गिर रही है धर्म न होने से, और अपने अज्ञानता की बातें दूसरे पर थोपने के लिए जा रहे, ये प्रतिष्ठा है क्या? किसी का नुकसान पहुंचाने वाला अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, या किसी का हित करने वाला प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है? तो अंधकार है ना जीवन में, सोच में अंधकार कितना है, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ सकती है ये भी सोच नहीं, दूसरे को अहित करने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि हित करने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये भी सोच में कितना अंधकार है। मोही कहो कुछ भी कहो उसको, लेकिन सोचो तो दिमाग में क्या लकवा लग गया कि क्या हो गया, ऐसा क्यों सोचता है, विचार क्यों नहीं करता? बुद्धि को लकवा लग गया क्या? विचारक नहीं, मनुष्य है, बुद्धि है, विचार करने लायक स्थिति है, क्यों जबरदस्ती दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है? अनायतन को ही आयतन बता रहा है, क्या है ये? अनायतन प्रत्यक्ष अनायतन दोष है, परिग्रह है, हिंसा है, सब दिख रहा है और गुमराह कर रहा है। ये देखो सम्यक दृष्टि है इसलिए पूजना चाहिए। अरे सम्यक दर्शन होने मात्र से पूजनी हो जाए तो दुनिया में जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, भोग भूमि में भी हैं और कुबो भूमि में भी हैं, वो सभी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। पूजो उनको, एक आकार बना लो, ढांचा लाओ नीचे का और ऊपर एक हाथी का मुख लगाओ, पूजा करो, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में है। नियम से सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जन्म लेंगे, देवगति में जाएंगे। महान है, महान है, पूजा करो सम्यक दृष्टि। गुमराह कहां कर रहे हैं, हे तीर्थंकर के भक्त सम्यक दृष्टि तुम मानते नहीं हो, शांति सागर सिंह ने कहा इसके बारे में, और तुम कौन हो, मानना चाहिए, पूजा करना चाहिए। गुमराह जैन धर्म यहीं पर गुमराह हो रहा है, जैन धर्म यहीं कलंकित हो रहा है, यहां दूषित हो रहा है, यहां मलिनता बढ़ रही है। ये विचारों का प्रदूषण जो दूसरे का है वो समाज में फैलेगा तो जो साधारण जीव हैं वो अकल्याण के मार्ग पर निकल जाएंगे। जबरदस्ती रोका जाता है, वहां कांजीपंथी के महाराज हैं, बहुत सुनने के लिए मत जाना। ये इस तरह से रोका जाता है। और जो कांजीपंथी के महाराज हैं वो क्या कह रहे हैं, वो तुम सबका सुनो लेकिन जो सत्य है उसी को करो। वो निष्पक्ष हैं, जिनको कांजीपंथी बोला जा रहा है वो निष्पक्ष हैं एकदम, उनको किसी से लेन देन नहीं, उनको तो जिनवानी से मतलब है, उन्हें तो अरहंत से मतलब है, उनको तो सन्मार्ग से मतलब है, उनको तो सिद्धांत और तत्व से मतलब है, सत्य से मतलब है। प्रदूषण फैलाया जा रहा है, कांजीपंथ कांजीपंथ कांजीपंथ। और साधारण व्यक्ति दक्षिण में तो साधारण लोग ही हैं, सब बहुसंख्यक लोग साधारण लोग हैं, वो घबरा जाते हैं, हाँ ऐसा कांजीपंथ कांजीपंथ मत जाना, उपदेश नहीं सुनना है। बोर्ड भी लगाते हैं, बोर्ड भी लग रहे हैं। ये सब देख करके मुझे हंसी आती है, लोग भी कैसे मूर्ख हैं, लोग भी कैसे मूर्ख, कितने मूर्ख हैं जो इतना सब कुछ होते हुए भी विचार क्यों नहीं करते सत्य क्या है। सत्य की पहचान करना नहीं चाहते, जो ये स्थिति है अवस्था है आज की, ये तो दुर्भाग्य है। उसको जैन धर्म पचाने का भाग्य नहीं है, जैन धर्म पचाने का भाग्य भी चाहिए। घी उसी को मिलता है जिसका पुण्य पूर्व का कुछ हो सत्ता में। हाँ, धर्म को पचाने का भाग्य भी तो होना चाहिए, वो भाग्यवान को ही पचता है, बाकी तो सब ठीक है, कूड़ा कचरा है। बाकी लोग तो कूड़े कचरे में हैं, उसमें से उन्हीं को धर्म पचता है जो विचारक है, जो विचार करता है वो भाग्यवान, जो सबका सुनता है लेकिन सत्य का करता है, सबका सुन करके सत्य उछान लेता है, अगर सत्य निकला तो ले लेता। ऐसे ज्ञान देने वाले ज्ञानी गुरु, ज्ञानी जीव, ज्ञानी सहधर्मी कोई आ जाए तो उसके लिए बहु कराने वाले बहुत हैं, बहु आ रहा है, क्या करोगे। मैं इसलिए कल कहा था, इस पंचम काल में अगर तुमने सबका सुना और सत्य का किया, सबका सुना, असत्यवान का भी सुना, सत्यवान का भी सुना, सत्य शास्त्र भी पढ़ा, सत्य शास्त्र भी पढ़ा, दुनिया को खोजबीन कर डाला, उथल पुथल कर दिया सब, किया सत्य लास्ट में, तो तुम्हारा नाम गिनीज बुक में दाखिल हो जाएगा। हुंडाव सर्पनी काल में यत्र तत्र अनायतन बिछे हैं, अनायतन ही पूजे जा रहे हैं, उसके बीच में आयतन की परिभाषा समझ करके अनायतन का त्याग किया और आयतन की पूजा में लग गए, गिन्नीस बुक में तुम्हारा नाम दाखिल होगा। यही आश्चर्य है। हुंडाव सर्पनी काल में और आप एक सम्यक दृष्टि बन गए, सत्यवान बन गए, सत्य का समर्थन करने लगे और सत्य को धारण करने से निर्भीक हो गए। या आप हीरे हैं, हीरे कोहिनूर हीरे हैं, इसका मूल्य हम नहीं कर सकते। हुंडाव सर्पनी काल में सारे लोग दिल को कमजोर बना के चलते हैं, दिल में भय रख करके चलते हैं, आचरण को शिथिल बनाते हैं। देखा देखी होता है सब। बाहर का प्रदूषण यहां आता है लोगों का, जिनवानी तो वहीं पड़ी रहती है, लोगों का प्रदूषण दिमाग में भर जाता है, वातावरण का प्रदूषण हमारे आत्मा में आ जाता है और उसमें हम अड़िग हैं। अगर सत्य के प्रति समर्पित होकर के उसको जीवन में निर्भीक होकर के उतार लिया तो समझ लेना वह एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य, जीवन का बहुत बड़ा आश्चर्य। और ऐसे आश्चर्यजनक व्यक्तित्व गिनीज बुक में दाखिल हो जाते हैं, हर कोई नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। धर्म दूसरे के प्रति करने की वस्तु नहीं, धर्म अपने प्रति करने की वस्तु है। जो आप करना चाहते हैं अपने लिए कुछ करो। धर्म का तात्पर्य मेरा सुख मेरा हित किस में, इसका नाम धर्म है। मेरा हित किस में, मेरा सुख किस में, उस सुख के प्रति, उस सत्य के प्रति, उस मार्ग के प्रति, उस सन्मार्ग के प्रति समर्पित होकर के रहना और छोड़ना नहीं, उसको अड़िग रहना, इसका नाम है धर्म। दूसरे ढंग से भी आयतनों की चर्चा हुई है, नाम दिए गए हैं छह आयतन, आप नोट कर सकते हैं। आयतन छह दूसरे तरीके से, अभी तक ये जो लिखे हैं छह प्रकार के ये अलग हैं, ये सुदेव सुगुरु सुशास्त्र और इन तीनों को मानने वाले भक्त, भक्त भी आयतन है, तो ये अलग तरीके से कहा है। दूसरी तरीके से है, पहले नंबर में जिन, जिनेंद्र भगवान, जिनको आप्त भी कहते हैं, आप्त, आप्त हमारे लिए आयतन है। दूसरे नंबर में जिन मंदिर, जिन मंदिर। तीसरे नंबर में जिनागम। चौथे नंबर में जिन शास्त्र। पांचवे नंबर में है सुतप। छठे नंबर सुतप, तप, सुतप। छठे नंबर में है सुतपस्वी, सुतपस्वी। आयतनों के नए नाम हम दे रहे हैं। बात तो एक ही है, देखो इसमें जो कुछ भी ये नाम अंकित हुए हैं, पहले नंबर में है जिनेंद्र भगवान। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान आयतन ही होते हैं, और जिन मंदिर, जब भगवान नहीं होते तो हमारे लिए मंदिर ही आयतन है। जिनेंद्र भगवान का मंदिर आयतन है। जिनागम यानी जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत शास्त्र, आगम वो आयतन है, जिनवानी आयतन है। तीसरे नंबर में जिनवानी, जिनागम आयतन है। चौथे नंबर में जिन शास्त्र, जिन शास्त्र का मतलब ये है कि जिनागम जिनेन्द्र भगवान जो दिव्य ध्वनि खिराते थे उसमें जो सिद्धांत तत्व था जो डायरेक्ट उनसे हमको मिल गया वो तो जिनागम है। जिनेन्द्र भगवान से जो आया आगमन हुआ वाणी का वो जिनागम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा आगमन हुआ जिस दिव्य ध्वनि का वो जिनागम। और जिन शास्त्र उसको लिख करके रखा, जिन वाणी को लिख करके जिसमें रखा वो जिन शास्त्र बन गया। जिनागम यानी अहिंसा सिद्धांत, या उसको धर्म भी कहो। जिनेन्द्र भगवान का आगम क्या है? अहिंसा सिद्धांत ही उनका आगम है। और धर्म क्या है? अहिंसा को ही धर्म कहते हैं। बात तो एक ही है, हाँ दोनों एक ही बात है। जिनागम कहो, अहिंसा धर्म कहो, अहिंसा सिद्धांत कहो, बात तो एक ही है। पर वो सिद्धांत जिस शास्त्र में लिख करके रखा हो उसकी भी तो हम पूजा करते हैं, इसलिए वो भी आयतन है। शास्त्र की आरती उतारते हैं, हम पूजा भी करते हैं, अष्टक भी करते हैं। शास्त्र भी आयतन और जो धर्म अहिंसा तत्व उसकी तो पूजा करते हैं हम, वो जिनागम है। और जिन मंदिर भगवान नहीं है इसलिए मंदिर बना, तो ये भी आयतन है भगवान के अभाव में। और साक्षात जिनेन्द्र भगवान तो आयतन है ही। पांचवें नंबर में सुतप, सम्यक तप करना। क्या बता रहे हैं? लिखने में लग गए। सुतप, सुतप यानी सम्यक तप, सम्यक दर्शन को धारण करके जो तपस्या की जाती है, अनशन उनोदर वृत्ति प्रसंग, बारह तप। ये बारह तपों को तपना सम्यक दर्शन के साथ और संयम के साथ होता है तो उसको सुतप कहते हैं। ऐसा सुतप किसके पास होगा? मुनियों के पास। सुतप और सुतपस्वी, सुतप भी पूजनीय है क्योंकि वो गुण है। सम्यक दर्शन के साथ जो तपस्या की जाती है वो गुण की कोटि में है, और सम्यक दर्शन के बिना जो घोर तपस्या की जाती है वो दोष के कोटि में है। पहले गुणस्थान में रह करके, मिथ्या दृष्टि रह करके घोर तपस्या, घोर कष्ट सहन करना, ये दोष है क्या गुण है? दोष ही तो है, दोष है। और सम्यक दर्शन धारण कर लिया, संयम भी धारण कर लिया, फिर बड़े तपस्या करने लगे कर्मों को काटने के लिए, ये गुण है क्या दोष है? ये गुण है। तो ऐसे रत्नत्रय के साथ जो तपस्या करते हैं उनको तो कहेंगे सुतपस्वी, छठे नंबर में। और सुतप क्या है? उनके द्वारा जो तपा जा रहा है वो गुण, बारह प्रकार के तप वो भी पूजे जाते हैं, वो गुण पूजे जाते हैं, वो है सुतप। पांचवें नंबर में समझ में आ गया। अब जहां तक थोड़ी सी बात और बच जाती है, आयतन के संबंध में तो बहुत कुछ विषय बताया गया, थोड़ी सी हम कर्म सिद्धांत पर चर्चा करें। मोहिनी कर्म 28 प्रकार का है, उसमें दो विभाग किया, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं, अनंत अनुबंधी के चार कषाय, अप्रत्याख्यान के चार कषाय, प्रत्याख्यान के चार कषाय, संजोलन के चार कषाय और नौ नौ कषाय। 16 कषाय और 9 कषाय, ये 25 हो गए। ये सभी चारित्र मोहिनी के ही भेद हैं, 9 कषाय और कषाय मिलकर के। दर्शन मोहिनी के केवल 3 ही भेद हैं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। ये कर्म हैं, ये पुद्गल परमाणुओं का ऐसा मटेरियल है जिसको हमने अनादिकाल से धारण किया है, स्वीकार किया है, बांधा है। और हमारे दुख में कारण कौन बनते हैं, तो यही पुद्गल मटेरियल उदय में आने के उपरांत दुख देता है। तो मोहिनी कर्म जो 28 प्रकार का है, कौन सा मोहिनी कर्म उदय में आने के बाद जीव के परिणामों पर, भावों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है और जीव उस समय कैसे हो जाता है उस प्रभाव के कारण से, ये बात चर्चा के लायक है। गोमटसार कर्मकांड में इस बात की चर्चा आई है। तो यहां एक एक कर्म की चर्चा करें। सम्यक प्रकृति का 9 कर्म बताया, जिनागम है, जिनायतन है। क्या बता रहे हैं? अब लिखने की नहीं, सुनने की जरूरत है। सम्यक प्रकृति दर्शन मुनि का भेद है। सम्यक प्रकृति के उदय में जीव के पास सम्यक दर्शन नियम से होता है, और मिथ्यात्व के उदय में जीव के पास नियम से सम्यक दर्शन होता ही नहीं। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में जीव के पास सम्यक दर्शन होता ही नहीं। सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय हो तब जीव किस गुण स्थान में रहता है? 3 में रहता है। और मिथ्यात्व कर्म का उदय हो तब किस गुण स्थान में रहता है? 1 में। सम्यक प्रकृति का उदय हो तो 4, 5, 6 और 7 इन गुणस्थानों में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। इनमें से कोई एक गुणस्थान हो सकता है। सम्यक प्रकृति के उदय में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये अब चर्चा ये है कि सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म है, पाप कर्म है क्या पुण्य कर्म है? पाप कर्म तो है ही, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी जीव सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक दर्शन के गुण को धारण कर रहा है। ये कैसे संभव? तो कहते हैं सम्यक प्रकृति ये सम्यक्तों का घातक नहीं, एक देश घातक है, पूर्ण घातक नहीं, आंशिक घातक है। आंशिक घातक है। कौन सा कर्म? सम्यक प्रकृति। सम्यक्तो का आंशिक घातक है, किंतु सम्यक मिथ्यात्व एक देश क्या पूर्ण? पूर्ण घातक है। तीसरे गुणस्थान में सम्यक्तो दर्शन कहाँ रहता है? सम्यक दर्शन नहीं रहता, तो पूर्ण घातक। मिथ्यात्व कर्म सर्वघाती है, पूर्ण घातक। ये 2 इसमें सर्वघाती है, सम्यक्तो गुण के सर्वघाती है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक प्रकृति देशघाती है। देशघाती का मतलब गुणों का देशघात करता है, गुण रहते हुए पूर्ण घात नहीं कर सकता, इसलिए इसको देशघाती कहा। ये जब भी उदय में रहेगा, सम्यक दृष्टि तो नियम से रहेगा जीव, परंतु उस सम्यक्तों में जरा कलंक लगाता रहता, ये उसका काम है, जानबूझकर लगाता है। कैसे लगाता है? तो चल मल अगाढ़ दोष उसके लगते हैं, ऐसा कहा। क्या है चल मल अगाढ़ दोष? चल दोष है ये तेरा मेरा, हाँ, समय प्रकृति। तेरा मेरा यानी ये हमारा मंदिर है, ये वो आपका मंदिर है। इसमें दोष लग गया, सम्यक तुम्हें दोष लगा। मंदिर तेरा मेरा होता है क्या? पर सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम हो सकते हैं, होते हैं। किस कर्म के उदय में? मोहिनी कर्म। कौन सा? सम्यक प्रकृति। ध्यान रखना पड़ता है कर्मों का नाम भी। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म कहते बैठे हुए तो नहीं चलेगा। सम्यक प्रकृति के कारण से हमारे ऐसे परिणाम होते हैं, है? तेरा मेरा, हाँ, उसमें राग द्वेष। इसके उदय में अनायतन के पास तो नहीं जा रहा है, वो तो मेरा है ही नहीं, ये कहता है। परंतु आयतन में भी मंदिर आयतन है। जिन मंदिर आयतन है कि नहीं? आयतन है। और आयतन को तेरा मेरा में उलझ गया, ये मेरा मंदिर, मैं यहीं पूजा करूंगा, वो उनका मंदिर, वहां क्यों जाऊं? मेरे भगवान मेरे मंदिर में, मेरे भगवान उनके मंदिर में, उनके भगवान। तो भगवान हमारे और तुम्हारे, ये सब होता है क्या? सभी जिन मंदिर नहीं, कोई भी जिन मंदिर में ही भेदभाव नहीं। सुनो तो, आपने एक मंदिर बना लिया, स्वाभाविक है कि आपने जिसको बनाया उसके प्रति बहुत अनुराग रहता ही है। दूसरे ने एक एक बना लिया है तो आपके मन में ये रहता है कि वो तो उन्होंने बनाया था, मैं वहां पूजा नहीं करूंगा, मैं अपने मंदिर में ही पूजा करूंगा। ये क्या है? ये सम्यक प्रकृति का दोष है। ये सम्यक प्रकृति के उदय के कारण से ऐसे भाव आपके हो रहे हैं। अब सम्यक प्रकृति उदय में न हो ऐसा कौन सा जीव है? तो क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षायिक सम्यक दृष्टि के साथ कर्म रहती, अनंतानुबंधी नहीं रहती, मिथ्यात्व नहीं रहता, सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं, सम्यक प्रकृति की न भी सत्ता सहित उनको उखाड़ दिया उनने। अब प्रभाव किसका? किसी का नहीं पड़ेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि को किसी भी दर्शन मोहिनी के प्रभाव से ऐसे परिणाम नहीं होंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि मेरा तेरा कर नहीं सकेगा। इतना निर्मल सम्यक दर्शन होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि समझता है कि ये मेरा मंदिर और ये तेरा मंदिर, ऐसा राग द्वेष करने की क्या जरूरत? उसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, वो भी वीतरागी और ये भी वीतरागी, और ये सब आत्म कल्याण के साधन हैं, ये सब आयतन हैं, ये सब सत्संगी संगति के लिए निर्माण किया गया है। गुरु में भी ऐसा ही है, जो आयतन स्वरूप गुरु हैं, वो मेरे तेरे का सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है किससे निर्देशन से चलना। दो गुरु नहीं बना सकता व्यक्ति, सम्यक दृष्टि हो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, गुरु दो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे व्रतों में, हमारे उसमें कुछ दोष आ जाए तो कभी उसके पास जाऊंगा, कभी इसके पास जाऊंगा, ये नहीं चलता। एक गुरु संभालेगा। एक ही गुरु संभालेगा। गुरु एक बनाने का मतलब ये है कि घर की चाबी एक के पास ही रहना चाहिए, कि सबके पास एक एक रहना चाहिए। घर के तो हैं सभी लोग, हम लोग तो तो सबके पास एक एक चाबी दे दो, सब जितना धन चाहिए सब निकाल ले जाना, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? नहीं, एक को ही मालिक बनाया जाता है। पर बाहर के व्यक्ति को क्यों नहीं बनाते? वो अपना नहीं है, तो इसमें अपना पराया का भेद आ गया ना, आ तो गया, और ये आना आवश्यक है, परंतु ये दोष नहीं। परिवार व्यवस्थित रूप से चले ये उद्देश्य है। एक रहेगा मालिक तो परिवार व्यवस्थित रूप से चलेगा, दो होंगे तुम भी मेरे मुझे संभालो, तुम भी मेरे जवाब, तुम भी मेरे, तीन कम 9 करोड़ को गुरु बना लिया, कहां कहां प्रायश्चित लेने जाओगे, मार्ग पूछने जाओगे? उपदेश सबका सुनो, रत्नत्रय होने के कारण से गुरु के कोटे में सभी हैं, अलग बात है, वो अलग बात है, परंतु निर्देशन मांगना सबसे या एक से, मैं कैसे कल्याण करूं, इसका निर्देशन मांगना एक से क्या अनेक से? एक से ही होना चाहिए। अनेक से मांगोगे ना तो चाबी सबके पास दे दोगे और फिर मुसीबत में पड़ोगे, उनका सुनू क्या इनका सुनू, वो तो ऐसा कहते हैं और ये ऐसा कहते हैं, फिर भ्रम में पड़ोगे, जमलिंग में पड़ोगे। हाँ, सुनना सबका, निर्देशन एक का ही लेना, एक से ही निर्देशन लेके चलना, अनेक का निर्देश, चलने के लिए अनेक नहीं चाहिए, मार्गदर्शन के लिए अनेक नहीं चाहिए, नमस्कार के लिए, पूजा के लिए सब चाहिए, रत्नत्रय है क्या नहीं इतना देखना उसमें भी, नहीं तो सब चाहिए तो सब इकट्ठा कर लिया तुमने, वो भी गड़बड़ है। पूजा के लिए सब चलते हैं, नमस्कार के मानने के लिए, निर्देशन के लिए एक ही चलते, तो ऐसा भी विवेकहीन काम नहीं करना। पूजा के लिए भी रत्नत्रयधारी चाहिए, हैं? और रत्नत्रयहीन हो तो न पूजा के लिए चाहिए, न नमस्कार के लिए चाहिए, न निर्देशन के लिए चाहिए, वो किसी काम में ही नहीं आते, वो किसी काम में नहीं आते। गुरु, वो गुरु है भी नहीं, गुरु की कोटि में आते भी नहीं, रत्नत्रय नहीं है तो गुरु कैसे? गुणों से गुरु होता है। अब निर्देशन एक का लेना क्यों आवश्यक है, समझ गए ना? निर्देशन एक का ही क्यों लिया जाता? क्योंकि एक का ले लोगे तो अच्छी तरह से कल्याण कर पाओगे और ज्यादा विकल्पित नहीं रहोगे। और सबसे लेना प्रारंभ करके देख लो, उसे भी प्रैक्टिकल करके देख लो क्या होता है। कुछ निर्देशन आचार्य से लेना और कुछ मेरे से लेना और कुछ और महाराज से ले लेना, फिर तीनों बातें इकट्ठी कर लेना, मैं क्या करूं सोचते रहना। आचार्य से का करूं मानू क्या, अक्षय सागर जी का मानू के इनका मानू, विकल्प में पड़ोगे कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, निर्देशन एक का लेना। हाँ, और पूजा करना हो तो रत्नत्रय को देख करके पूजा करना, और गुरु मानना हो तो रत्नत्रय धारी को ही गुरु मानना, और 3 कम 9 करोड़ जो होते हैं सबको गुरु के कोटे में रखना, गुरु ही मानना, और जब नमस्कार करोगे याद करोगे, नमस्कार करते सभी याद कर लेना, पर निर्देशन एक का ही लेना। तुम घर में अपनी व्यवस्था करते इस टाइप की, यहां पर क्यों नहीं करते? घर में तो एक के पास ही चाबी रहती है, जो भी पूछा जाता है चाबी वाले को ही पूछा जाता है, निर्देशन उन्हीं से लिया जाता है। घर में तुम्हारा बेटा कहीं जा रहा हो, मां से पूछता है क्या? नहीं, पहले माँ से ही पूछता है, पिता से तो बाद में। निकटतम आयतन माँ निकटतम आयतन होती है बेटे के लिए, हर बात में बार बार। माँ तो प्रधानमंत्री है, पिता तो राष्ट्रपति है, सिग्नेचर के लिए जाना पड़ता है केवल। परिवार में माँ प्रधानमंत्री के समान रहती है, पिता राष्ट्रपति रहता। जब वो दुकान से आए तब सिग्नेचर करवाना, पापा मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पूछा है क्या नहीं घर में? पूछा है ना, तो कितना पैसा दे दिया? तो इतना इतना दिया है। तो क्या खाएगा? बेकरी सामान। खबरदार, बेकरी सामान नहीं लेना, ठीक से पूछ के जाना दुकान, पुनः पूछना क्या खाना। तो जाकर के मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या ले लूं इसका खाने के लिए बाजार में, क्या कहना चाहिए उससे? चुरमुरी खा लेना, लेकिन चॉकलेट और बिस्किट कभी मत खाना बाजार का। कहोगी कि नहीं है? मांसाहार से बचाओगी, बचाएंगे कि नहीं बच्चे को? ये सब मांसाहारी चीजें आ रही हैं। हाँ, ये सब मांसाहारी चीजें आ रही हैं, उनको नहीं खिलाना। हाँ, लिखते हैं पॉकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता, इसलिए हम कह रहे हैं प्रतियोगिता रखो। चर्चा हुई कि नहीं? प्रतियोगिता रखो, सब लोग उन चीजों को घर में ही बनाने का सीखो। महापाप से बचाओगे अपने परिवार को। तुम अपने बेटे को नरक में नहीं डालना चाहती है तो घर में ये वस्तु बनाना सीखो। ये मामूली बात नहीं है, बहुत विशेष बात कह रहा हूं। अपने परिवार को नरक में डालना है क्या बाजार की वस्तु खिला करके? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए अपने घर में? बनाओ, एक साथ बना करके इकट्ठे रखो और धीरे धीरे खाते रहो, खत्म हो गया और बनाओ। बनाने की कला सीखो और इसकी प्रतियोगिता चले। करेंगे ना प्रतियोगिता? हाँ, किसी को मालूम ना हो तो मालूम चले, इसलिए प्रतियोगिता। शुद्ध विधि से कैसे बनाना चाहिए, किसमें क्या क्या, कैसे कितनी चीजें डाली जाती है, सब प्रैक्टिकल रूप से दर्शाएंगे तो सब उससे शिक्षा लेंगे, वो घर में बनाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, सबके लिए लाभ मिलेगा। वो चार्ट अभी नहीं छपा, ज्यों का त्यों ऐसा रह गए। दीपावली से पहले उस चार्ट को घर घर लगाना है। वो काल मर्यादा वाला, पदार्थों की काल मर्यादा वाला है? हाँ, जल्दी करना उस काम को, क्योंकि उस पर मुझे एक दो दिन प्रवचन भी देना है उन चीजों पर। जल्दी काम करना, जैसा भी होता है उतना जल्दी ही करना। टाइम हो गया? प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीशन वाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।